भाव संबंध। देखो भाई, यदि हम भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए अपने से तुलना करें ना, तो हम इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे लगते हैं कि हमारे लिए तो सूर्य के सामने दीपक की उपमा भी बड़ी हो जाती है। भाई, हमारा तो दिया भी कितना छोटा सा है, इतने पर भी वायु के एक झोंके से कब बुझ जाए इसका भी ठिकाना नहीं है। ऐसे में कितना और कितने समय तक यह प्रकाश रहेगा, यह भी विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह दिया दिया हुआ है ना, इस पर हमारा पूर्ण अधिकार तो है नहीं कि जितनी इच्छा हो उतना रखें। इस कारण हमारे और षडैश्वर्य संपन्न भगवान के बीच में दूरी बनी ही रहती है। पर यह पुराण तो भगवान से हमारा शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुरादि भावों से नितांत वैयक्तिक संबंध जोड़कर हमारे अपने ही माता पिता, भाई, बहन, पुत्र, मित्र, पति आदि रूप में इनको इतना अपना बना देते हैं कि आहा, इस अपनेपन के आगे तो केवल हमारा संकोच ही नहीं, स्वयं सर्वेश्वर भगवान का भी सारा ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। भाव वैशिष्ट्य। भगवान तो एक ही है, पर भाव संबंध के अनेक रूप हैं। भावों में अनेकता होने पर भी सभी भक्तों को उपलब्धि तो इन सारे ही भाव संबंधों के धारक पालक एक ही ईश्वर की होती है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि ज्ञान तो वस्तुनिष्ठ ही होता है। यदि कोई वस्तु लाल है तो हमें उसके लाल रंग का ही ज्ञान होगा, और पीली होगी तो पीला। हम अपनी इच्छा से किसी लाल वस्तु को पीला नहीं कह सकते, यदि ऐसा करें भी तो वह ज्ञान नहीं कहलाएगा। अतः स्वरूपतः चैतन्य के विज्ञान में हम अपने व्यक्तिगत भावों को जोड़ने में स्वतंत्र नहीं हैं। पर उपासना तो व्यक्तिनिष्ठ होती है ना, अतः इसमें हम पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। हम अपने अपने संस्कारानुसार भगवान को अपना पिता माने कि पुत्र, स्वामी माने कि मित्र, यहाँ तक कि इन्हें तो हम शत्रु मानकर संबंध जोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। देखिए तो, ज्ञानी तो ज्ञान होने पर मुक्त होते हैं, पर पुराण तो भक्तों को भगवत संबंध पूर्वक भगवान की ओर अपनेपन का एक कदम बढ़ाते ही स्वभावतः स्वतंत्र कर देते हैं। जब नितांत आत्मीय संबंध का बोध हो जाता है, तब उनकी कृपा से तत्वानुभूति तो स्वतः सिद्ध है। षट दर्शन। जैसे सभी भाव संबंधों से एक ही ईश्वर की उपासना होती है ना, ठीक वैसे ही महाप्राज्ञ आचार्यों ने एक ही वेद विज्ञान को 6 दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इन्हें ही हम षट दर्शन के नाम से जानते हैं। ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन है। अतः जैसे सारी सृष्टि की रचना को वैज्ञानिक रूप से प्रकट करने के साथ ही वेदों का चरम व परम लक्ष्य परब्रह्म परमात्म तत्व की प्राप्ति है ना, वैसे ही इन सभी दर्शनों का लक्ष्य भी सृष्टि रचना की सरल सुलभ मीमांसा के साथ ही परम धर्म परम तत्व की प्राप्ति या कैवल्य मुक्ति ही है। अतः ये सारे ही दर्शन आंशिक रूप से वेदों के तर्क सम्मत भाष्य ही हैं। इसी कारण भले ही ये वेद विज्ञान के स्वयं निर्धारित अंश को ही प्रकट करते हों, पर केवल इस आंशिक अभिव्यक्ति के कारण से ही ये वेद विरुद्ध नहीं हो जाते, ये तो वेद सम्मत ही हैं। ऐसा वे स्वयं कहते भी हैं, और वेद अपने आप के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकते ना। अतः यह तो स्वतः सिद्ध है कि ये वेदानुकूल 6 दर्शन आपस में भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। बाहर से स्वभाव की षट्स्वरित विभिन्नता होने पर भी स्वरूपतः एक ही परम सत्तात्मक षड्ज रूपी समत्व में अचल रूप से स्थित ये सारे ही स्वर संवादी हैं। इनमें एक भी स्वर विवादी नहीं है, अतः इन सब में तो पूर्ण सामंजस्य है। हम यथास्थान इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पंचम पुरुषार्थ। एक ओर कालचक्र के प्रभाव से प्रकृति में रजस तमस की मात्रा बढ़ती रही, तो इसके परिणाम स्वरूप मानवों में भी वेदानुभूति की पात्रता घटती रही। दूसरी ओर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों द्वारा अनवरत अक्लांत भाव से वेद विज्ञान को परिभाषित करने वाले युग धर्म प्रसारी सर्वसुलभ सत्शास्त्रों की रचना भी होती रही। इस अति प्रबल पुरुषार्थ को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन महान आचार्यों का यह मंगलानुशासन केवल हमारे कल्याण के लिए ही है, पर जब हम उनकी शिशु सुलभ सरलता, भगवती गंगा जी सी पवित्रता, देवतात्मा हिमालय की अचलता के साथ ही उसमें प्रवाहित होने वाले निर्झरों की प्रगल्भता, स्वरूप की सरसता व आत्मलीन अवस्था में भगवत प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ के दर्शन करते हैं ना, तो हम अपना अहम भूल कर अहोभाव से भर जाते हैं। अरे ये वेद तो समवेत स्वर में परम पिता परमात्मा के यशोगान में ही निमग्न है। ऐसा लगता है कि इनकी परम तत्व की प्रशस्ति में तो मानो इस जड़ जैसी दिखाई देने वाली सृष्टि में पंचभूतों से प्रकट होने वाले सारे ही भाव, भले ही वे वीणा जैसे तंतुवाद्य हों या वेणु जैसे सुषिरवाद्य, कांसे के झांझ जैसे घनवाद्य हों या जल तरंग जैसे तरलवाद्य या मृदंग जैसे अवनत वाद्यों से प्रकट होने वाले गुरु गंभीर भाव ही क्यों न हो, आहा वे सब प्रकृति ध्वनि के अनुरणन में इस बाह्य प्रभाव से मुक्त हो अपने अपने बहुत्व और जड़त्व को विस्मृत कर स्वभावतः आत्मचेतना के घनीभूत रूप मानवीय कंठ की मधुर ध्वनि के साथ एक तान होकर अनंत में व्याप्त हो जाते हैं। दिव्य गान। भगवत गीता के बारे में तो क्या कहे रे भाई, इसे और इसको गाने वाले गोपाल कृष्ण को तो हम सब जानते ही हैं, है ना? अरे यह तो स्मृति ग्रंथ होते हुए भी स्वयं भगवान के श्रीमुख से निसृत होने के कारण श्रुति के समान ही समर्थ व श्रद्धास्पद है। इस दिव्य गान से एक ओर तो वे आत्मरूप वेद विज्ञान को सरल व सुसंस्कृत रूप से परिभाषित करते हैं, दूसरी ओर इस वेदानुकाल सत्शास्त्रों व इनके रचयिताओं को तो अपनी ही विभूति कहकर प्रमाणित भी करते हैं। आहा जब वे सृष्टि क्रम द्वारा ब्रह्मलोक से पाताल और तत्क्षण ही संहार क्रम से अपनाकर भूमि से ब्रह्मलोक ही नहीं परम धाम तक की रोमांचकारी अंतरयात्रा करवाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि ये सुघोष वैखरी से परा तक की मींड लेते हुए हमें अनायास ही इस जागतिक प्रपंच से परे परम तत्व में प्रतिष्ठित करने का परम मंगलमय विधान रच रहे हैं। परम सत्य का संधान। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, सारी सृष्टि के कण कण में समाया सनातन धर्म तो शुद्ध विज्ञान ही है। इसमें तो अवैज्ञानिक सोच को ही अधर्म माना है। इस स्पष्टता के साथ ही हम इन्हीं शास्त्रों में समाहित वेद विज्ञान को प्रकट व परिभाषित करने के लिए कृत संकल्प है। अतः इन सत्शास्त्रों के स्वर्णिम पृष्ठों को पलट पलट कर परम सत्य का संधान करने वाले हैं। पर किसी भारी भरकम पारिभाषिक शब्दों वाले गंभीर ग्रंथ का प्रणयन तो क्या, पढ़ना भी भाई मेरे जैसे के लिए तो वेद विज्ञान को आत्मसात करने, इसे परिभाषित करने व प्रचारित करने वाले आचार्यों की कथा सरिता में मन को निमग्न कर देना गंगा जी में डुबकी लगाने जितना ही सरल व सार गर्भित है। पुराण प्रस्तुति। जब कथाओं की चर्चा चलती है ना, तब पुराणों का स्मरण तो स्वतः हो जाता है, और पुराणों का स्मरण होते ही हमारे मन में श्रावण की सरस शीतल फुहारों जैसी ही मधुर कथाओं का स्फुरण होता है। पुराण और कथाएं मानो पर्यायवाची हों, ऐसा ही लगता है। सारे संसार के कथा साहित्य का मूल उद्गम तो ये पुरातन कथाएं ही है ना, अतः ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। और इसमें तो एक पंथ दो काज वाली कहावत भी चरितार्थ हो जाती है। पुराणों में समाहित विज्ञान से ही प्रारंभ करें और इस विज्ञान को पौराणिक काव्य कथामय कलात्मक विधि से ही प्रस्तुत करें, ऐसा निश्चय हो जाता है। पुराण भी तो 18 हैं और उपपुराणों को भी मिला दें तो यह संख्या और बढ़ जाती है। पर हाँ, हाथी के पांव में सबका पांव तो हमने सुना ही है। 10 लक्षणों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सारे ही पुराणों का सार भरा हुआ है। अरे केवल पुराणों का ही नहीं, इसमें तो सारे ही शास्त्रों का सार समाहित है। अतः इस चतुष्पद से तो ज्ञान, योग, कर्म, भक्ति सारे ही पद प्रकाशित होते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है मानो वेद व्यास जी रूपी कुशल माली ने भांति भांति के पुष्पों के सौरभ सौंदर्य वाली इस पुष्प वाटिका को विज्ञान वारी से सींचा है। अतः इस बहुरंगी विविधता के भी मूल में तो एक वेद विज्ञान ही समाया है। हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि सनातन वांग्मय ही नहीं, सारी सृष्टि में इतनी सरल सरस रीति से सविशेष निर्विशेष को एक साथ प्रकट करने वाले किसी ग्रंथ का जन्म ही नहीं हुआ है। भाई, भक्त भगवान की इस परम पावन कथाओं का पुण्य स्मरण इस घोर कलिकाल में सभी प्रकार की मनस्थिति वाले हम कलियुगी मानवों को भी कृतयुग के समान कृतार्थ करने में समर्थ है। अतः हमारी कथा सरिता इनका यशोगान करते करते ही इस अमृत सिंधु में विलीन होकर अपने परिपूर्णतम स्वरूप को प्राप्त करने वाली है। संवाद के मध्य अध्यात्मवाद, आप स्वयं उनकी सरस शैली देखिए ना। कथा, उसमें भी कथा, उस कथा में भी एक और कथा। इस कथा विधान के माध्यम से वे अनायास ही हम अल्पजीवी मानवों को शाश्वत परंपरा से जोड़ते हुए हमारे समक्ष भी सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत की परम मंगलमयी कथा के प्रसंग में परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव जी शरणागत जिज्ञासु राजा परीक्षित को मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद सुना रहे हैं। मैत्रेय जी भी भगवत कथा के प्रसंग में विदुर जी को ब्रह्मा जी और देवताओं के मध्य का संवाद सुना रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी देवताओं की व्यथा के संदर्भ में अपने ही मानस पुत्रों सनकादि ब्रह्मर्षियों और भगवान के मध्य संवाद और संवाद के भी मध्य में उनके द्वारा की गई भगवान की वेद विज्ञानमयी स्तुति सुना रहे हैं। और इन सब संवादों और संवाद के माध्यम से प्रकाशित होने वाले धर्म और अध्यात्मवाद को श्री वेदव्यास जी हमारे लिए लिपिबद्ध कर रहे हैं। कथाओं के माध्यम से हमारी व्यथा को हरने वाला यह अनुपम प्रयास कितना अद्भुत है ना? विडंबना। वर्तमान युग की एक विडंबना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की इच्छा हो रही है। इस कलिकाल में शास्त्रों को गुरुमुख से विधिपूर्वक पढ़ने की परंपरा तो अब लुप्त होती जा रही है। भगवत कृपा से हमारे मन में शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा होती है तो हम पुस्तकों को घर लाकर पढ़ने लगते हैं। यह भी अच्छा ही है, पर हमारे शास्त्रों में तो बहुत गंभीर अर्थ वाले पारिभाषिक शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। अतः पारंपरिक विज्ञान के अभाव में उन शब्दों के हमारे द्वारा समझे गए मनमाने अर्थ बहुत सीमित और प्रायः अपूर्ण ही होते हैं। और कभी कभी तो हम उनका विपरीत अर्थ भी निकाल लेते हैं। पूर्व का प्रकाश तो अब प्राचीन कथा बन गई है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षित होकर अब तो हम ऐसे पश्चिमाभिमुखी हो गए हैं कि उगता सूर्य तो हमें कभी दिखता ही नहीं, बस ढलते सूरज को देखते देखते हमारा अवसादग्रस्त जीवन भी ढल रहा है। भाई, प्रतीचि का आलोक लौकिक तन को भले ही आलोकित करे, पर प्राची के प्रसाद से ही हमारे तन मन दोनों प्रकाशित प्रफुल्लित होते हैं। यह तो हमारा चिर परीक्षित ध्रुव सत्य है। धर्म विज्ञान। हम सत्य युग से प्रारंभ करके द्वापर तक सामान्य झलक देखते हुए अब तक द्वापरांत के कथा संवाद में ही डूबे हुए थे। हमने कलयुग का स्पर्श भी नहीं किया था, पर कलयुग ने तो हमें अपने में आपाद मस्तक डुबा दिया है। कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के होते हुए भी विश्वास और विज्ञान के अभाव में हम तो इसके परम शुद्ध भाव की धारणा में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। अभी तो हमें धर्म अध्यात्म में भी साइंस चाहिए। साइंस के इस युग में हम अंधविश्वासी धर्म के बोझ को कैसे ढोएं? पर धर्म के अभाव में यह जीवन ही एक बोझ बन रहा है, इसे हमें कौन समझाए? प्रातःकाल 7-8 बजे उठने में कौन सा साइंस है? उठते ही चाय कॉफी अर्थात बेड टी पीने में कौन सा साइंस है? ये फास्ट फूड खाने शीतल पेय पीने में कौन सा साइंस है? फटे कपड़े पहनने में, जूते पहने पूरे घर में घूमकर सारे नगर की गंदगी घर में लाने में कौन सा साइंस है? अपनी दिनचर्या के कितने काम हम साइंस का ध्यान रखकर करते हैं? हमारे जीवन में भले ही साइंस न हो, पर धर्म में तो हमें साइंस देखे बिना स्वीकार करना अनपढ़ गवारों का काम लगता है। हमारे जीवन में अज्ञान और धर्म में विज्ञान की ऐसी विचित्र मानसिकता के बारे में क्या कह रहे भाई? कोई शब्द ही नहीं सूझ रहा। आप ही किसी उपयुक्त शब्द का चुनाव करिए ना। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, भारतवर्ष में दूरदर्शन का प्रवेश हुआ ही था तब की। उस समय बालकों के संस्कार की दृष्टि से हानिकारक और अपने लिए भी अनुपयोगी मानकर अनेक प्रबुद्ध जन इसे घर में लाने में संकोच कर रहे थे। पर बालक तो बालक ठहरे, वे किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर इसे देख आते थे। उसी काल में मैं एक दिन मित्र के यहाँ बैठा हुआ था और भी 2-3 सज्जन वहाँ उपस्थित थे। हम लोग किसी गंभीर चर्चा में निमग्न थे। इतने में उन मित्र की 7-8 वर्ष की पुत्री दौड़ती हुई बैठक के कमरे में आई। टीवी देखने की प्रसन्नता उसके मुख पर झलक रही थी। आते ही मानो कोई बड़े भारी रहस्य की बात हो, ऐसे भाव में अपने पिता से पूछने लगी, पापा समझदारी किसमें है? अब बेचारे पापा क्या उत्तर दें, यह सोच ही रहे थे कि वह एक कपड़े धोने के पाउडर का नाम लेकर बाल सुलभ हाव भाव से बोली, इतना भी नहीं पता कि खरीदारी में ही समझदारी है। ऐसा कहते कहते ही वह घर में दौड़ गई। व्यावसायिक विज्ञापन का बाल मन पर ऐसा प्रभाव देखकर एक बार तो हम सब हंस पड़े, पर तत्काल मन में आया, अरे यह तो समझदारी की सीमाओं का निर्धारण हो गया। तब से अब तक साइंस ने कितनी प्रगति की है, सब उन्नत हो गए, बालक भी युवा हो गए, पर हमारी समझदारी की सीमा तो वहीं की वहीं रही। जल की बोतल में विष, शीतल पेय में विष, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में विष, दिन भर विष ही विष पीना है, अत्यधिक मूल्य देकर आधे अधूरे फटे कपड़े पहनना है, दिन भर ऐसे ही देखा देखी कार्य करते रहना है, क्यों? नहीं, यह प्रश्न हमारी समझदारी की सीमाओं में ही नहीं आता। वह कौन है जो हमें अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है? नहीं, मॉडर्न युग में यह प्रश्न पूछना भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमारी समझदारी की सीमाओं में ऐसे इन साइंटिफिक प्रश्नों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। भाई, हमारा सनातन धर्म तो मात्र विश्वास नहीं, विज्ञान है। केवल विशेष समय या अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले रीति रिवाज नहीं, पूरा का पूरा जीवन है, दर्शन है, अनुभूति है। हाँ, अवश्य ही व्रत, त्योहार, उत्सव भी सनातन धर्म के ही अंग हैं, पर हमारा जीवन तो इतने में ही सीमित नहीं है ना। अतः सनातन धर्म भी इतना ही सीमित नहीं है, यह तो असीम अनंत है। धर्म तो सृष्टि के कण कण में प्रतिष्ठित है ना, अतः यह तो हमारे हर कर्म में समाहित है। धर्म को जीवन से अलग करना ही अधर्म है। देश व काल के अविनाभाव संबंध को तो हम जानते ही हैं। जो कण में प्रतिष्ठित है ना, वह क्षण में भी तो प्रतिष्ठित है। अतः हमारे कर्म और काल सब में धर्म समाया है। कर्म और काल दोनों का लोप न हो, यही हमारे आप्त पुरुषों का उपदेश आदेश है। इतने स्पष्ट दिशा निर्देश के पश्चात भी हमने धर्म और विज्ञान को, धर्म और जीवन को अलग अलग कैसे मान लिया, इसका कारण जानते हैं आप? धर्मार्थ। धर्म शब्द बहुत गंभीरार्थक है। इसके अर्थ के अनुसंधान में तो सभी प्राकृत पदार्थ प्राणियों के जीवन का अर्थ, उनका आंतरिक रूप ही नहीं, परमार्थ स्वरूप परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। पर हम बोलते तो धर्म है, अर्थ लेते हैं रिलीजन का। रिलीजन भी अच्छा शब्द है, इसका अपना अर्थ है, पर सारे विश्व की किसी भी भाषा में धर्म शब्द के समानार्थक कोई शब्द है ही नहीं। आप स्वयं देखिए तो, हम कहते हैं ना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, पर हम यह नहीं कह सकते कि माता पिता की सेवा करना पुत्र का रिलीजन है। हम कहते हैं अग्नि का धर्म है उष्णता, पर यह नहीं कह सकते कि अग्नि का रिलीजन है उष्णता, है ना? देखो भाई, बहुत ध्यान से धारण करना। इस सारी सृष्टि को परम सत्ता ने धारण कर रखा है, अतः वह एक ही परम धर्म है। सृष्टि के सारे ही प्राणी पदार्थ इन्हीं पर आधारित हैं, है ना? अतः ये सभी प्राणी पदार्थ भी अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न विशेषताओं के साथ इस एक ही परम धर्म को धारण करते हैं, यह तो स्वतः स्पष्ट है। अतः एक परम धर्म ही उन सब विशेष पदार्थों में उष्णता आदि विशेष धर्म और हम सब मानवों में हमारी व्यक्तिशः परिस्थितियों के अनुसार स्वधर्म के रूप में प्रकट होता है। यानी सबके अस्तित्व के बोध के साथ ये विशेषताएं, विशेष परिस्थितियां आरोपित हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है उष्णता और पुत्र का स्वधर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह परम धर्म ही इन स्वकीय विशेषताओं के कारण सीमित लगने लगता है। आहा, हमारे हृदय में इसकी थोड़ी सी भी धारणा होते ही धर्म का कितना गंभीर अर्थ ध्वनित होता है ना? अब आप ही बतलाइए, रिलीजन से यह सब अर्थ प्रकट होता है? हम धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण कितना भटक जाते हैं। भाव विकृति, ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है विज्ञान। वर्तमान में तो हमने विज्ञान का अर्थ ही साइंस कर दिया है, पर भाई यह तो बहुत ही नया शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति को तो अभी 2000 वर्ष भी नहीं हुए, पर हमारा विज्ञान तो लाखों वर्ष पुराना है। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, तंत्र, षड् दर्शन, भगवद गीता, ऐसा एक भी प्राचीन शास्त्र नहीं है जिसमें यह शब्द अपने गरिमामय स्वरूप के साथ प्रतिष्ठित न हो। आप थोड़ा सोचिए तो, जिस समय साइंस शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय वे महापुरुष विज्ञान शब्द से क्या अर्थ लेते थे। इन दोनों के अर्थ में इतना अधिक अंतर है कि इसे तो 100 पृष्ठों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः हमारी कथा सरिता में यह विज्ञान निरंतर प्रवाहित और परिभाषित होता रहेगा। भय। इस कथा सरिता में भी धर्म, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म आदि बहुत सारे पारिभाषिक शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है ना। अतः मन में भय होता है कि यदि हम भी इस अंधानुकरण में लगे ही रहे तो हमारे सारे ही शास्त्रीय शब्द शुद्ध वैज्ञानिक रूप में ही रचे पचे हैं। अतः इस अंतर्दृष्टि से ही हमें इनके स्वधर्म और परम धर्म के अनुसार क्रमशः अर्थ और परम अर्थ को जानना है। ऐसे सत्संकल्प से ही हमारे अंतरतम में परम सत्य का प्रकाश होगा। अतः हमें प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का ही अनुसरण करना है। पारिभाषिक शब्द हों या सामान्य व्यवहार के शब्द, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों शब्द हैं जिनके अर्थ को हमने विकृत कर दिया है। अतः मन तो होता है कि पहले इन उपेक्षित तिरस्कृत शब्दों का ही उनके शुद्ध भाव को सुरक्षित रखते हुए कोई शब्दकोश प्रकाशित हो। हमारे नित्य उपयोग में आने वाला एक शब्द है घी। वर्तमान में हमने बटर ऑयल को घी कहकर घी का ही नहीं स्वयं अपना भी सत्वमय ओजस नष्ट कर दिया है। जब हम यज्ञ की गंभीर शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया की चर्चा करेंगे ना, तब इसके वास्तविक अर्थ को जानेंगे। हमारे परिचय के विषय में तो क्या कहे रे भाई, माता पिता के संबोधन जैसे व्यक्तिगत परिचय से लेकर स्वदेश के परिचय तक के विषय में तो हमारी अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। कुछ विदेशी यात्री भारत आए तो अन्य देश समझकर भ्रमवश भारत को इंडिया कहने लगे। वे तो कहते ही रहे, पर हमने तो भारत को इंडिया बनाने का इतना प्रबल पुरुषार्थ कर दिखाया है कि सारे विश्व के इतिहास में ऐसा एक भी दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसा कौन होगा जो अपनी अस्मिता को स्वयं ही चुनौती देता हुआ इसे नष्ट भ्रष्ट करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा दे। कोई भी देश केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूखंड ही नहीं होता। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक जीवन मूल्य होते हैं, वह उनके अनुसार ही देशवासियों का जीवन होता है। पर शब्दार्थ में परिवर्तन के कारण शुद्ध भाव की धारणा के अभाव में धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों के अंतराल में जब हृदय के संस्कार धूमिल हो जाते हैं ना, तब इनका प्रभाव हमारे बाह्य व्यवहार पर भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के विपरीत कार्य करते करते इसके विरोधी बन जाते हैं। आज भले ही हम आत्मविस्मृत हो गए हैं, पर अब पूर्व में प्रकाश होने लगा है। हमारे शरीर के पोर पोर में रमा हुआ पुण्य श्लोक पूर्वजों का रक्त ही हमें इस विचित्र कार्य से विरक्त और अस्मिता में अनुरक्त करेगा। कभी सारे विश्व को अपने अलौकिक ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित प्रबोधित करने वाला जगत गुरु भारत एक बार और उठ खड़ा होगा। हाँ, अपनी संपूर्ण गरिमा और महिमा के साथ अपना गौरवशाली मस्तक ऊंचा करेगा। अर्थ ब्रह्म। एक और विचित्र स्थिति तब बनती है जब हम अर्थ में परिवर्तन भी नहीं करते और शब्दों का वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास भी नहीं करते। बस किसी भी शब्द के अर्थ के नाम पर उसके पर्यायवाची शब्द को जानकर ही संतोष कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब भीतर ही अर्थ का प्रकाश नहीं होता, तब बाहर भी हमें अनर्थ अंधकार से कौन बचा सकता है रे भाई। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक व्यक्ति अपने छोटे से गांव से नगर में आया। उसे वहां 2-3 दिन रहना था। अतः कहाँ रहूंगा यह चिंता उसके मन को उथल पुथल कर ही रही थी कि इतने में उसने उसी नगर में रहने वाले अपने एक पूर्व परिचित को देखा। उनको देखते ही मन में सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब इनके यहाँ रह लूँगा। अतः मिलते ही बहुत अपनेपन के साथ उनका पता पूछा। वे सज्जन भी बहुत अनुभवी थे, अतः तत्काल उसका मंतव्य जान गए और टालने के उद्देश्य से दोनों के पूर्व परिचित एक सज्जन का नाम लेते हुए कहा, राम को तो आप जानते ही हैं ना, बस उसके घर के ठीक सामने मेरा घर है। राम का घर कहाँ है? अरे मेरे घर के ठीक सामने, वह थोड़ा झुंझला कर बोला। पर दोनों का घर कहाँ है? वह थोड़ा झुंझला कर बोला पर दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। हम भी किसी शब्द का अर्थ जानने के प्रयास में दो चार पर्यायवाची शब्दों को आमने सामने करके स्वयं आत्मतृप्त होकर वहां से हट जाते हैं। जब अर्थ ब्रह्म से भ्रमित मन में जिज्ञासा ही न रही, तब अर्थ जानेगा कौन रे भाई? आप सोचिए तो, हम दिन भर में ऐसा कितनी बार करते हैं, और हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते समय तो ऐसा। पारद शब्द का क्या अर्थ है? पारा और पारे का अर्थ रस धातु और रस धातु का रसराज। भाई इन पर्यायवाची शब्दों से तो दूसरों को उपदेश तो हो सकता है, पर स्वयं को अनुभव नहीं हो सकता। अरे अनुभव की तो प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हो सकती, इसके लिए तो व्याख्यान नहीं वस्तु ही चाहिए। हाँ साक्षात वस्तु ही। कोई पारे का अर्थ जानने का दृढ़ प्रतिज्ञ जिज्ञासु झुंझलाकर पूछे कि इन चारों का अर्थ क्या है, तब उसे तो किसी पात्र में पारा लाकर दिखाना ही पड़ेगा, है ना? पारे को देखने मात्र से ही उसके सभी गुणों का पूर्ण परिचय तो नहीं होगा, पर इस प्रारंभिक धारणा से आगे गंभीर अनुभव का मार्ग तो खुल ही जाएगा। पर यदि उस समय पारा उपलब्ध न हो तो अर्थ की धारणा के लिए क्या कहेंगे? भाई उसमें धारणा शक्ति आदि धातु के गुण होने के कारण उसे धातु कहते हैं। उसमें जल के जैसे रस के गुण भी हैं, अतः धातु होते हुए भी तरल रसायन होता है। पृथ्वी के सारे ही रसायन सूर्य के तेज व चंद्र किरणों की शीतलता का भूमि व भूमि से उत्पन्न लता औषधियों के साथ देश काल कोण क्रम मात्रा के तारतम्य अनुसार मिलने से ही विविध रूपों में निर्मित होते हैं। उनमें भी प्राकृत शुद्ध पारद तो सीधे ही सूर्य के प्रचंड तेज का शुष्क भूमि के संपर्क से परिणत तेजस रूप ही है। अतः शरीर को धारण करने वाले सभी सप्त धातुओं को पुष्ट करने व सिद्धि साधन में भी समर्थ बनाने के विशिष्ट गुणों वाला यह रस धातु तो रसायनों में सर्वश्रेष्ठ होने से रसराज कहलाता है। इन सब गुणों के साथ ही इसका रंग ऐसा रूप ऐसा होता है। अन्य अनेक उदाहरणों से इसकी धारणा का प्रयास करेंगे। इतना सब होने पर भी इनसे बहुत ही अच्छी धारणा हो ही जाएगी ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पर हाँ इस धारणा का एक बहुत सुंदर उपाय है, शब्द धारणा से अर्थ धारणा के योग्य बनना। प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ में अविनाभाव संबंध होता है, यह तो हम जानते ही हैं। पर कोई भी पर्यायवाची शब्द किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं होता। सामान्य शब्द जिस वस्तु की ओर संकेत करता है ना, वह वस्तु ही उसका अर्थ होती है। अतः शब्द और अर्थ अलग अलग ही होते हैं, पर वेद मंत्रों के शब्द वे पात्र हैं जिनमें उनका अर्थ भरा है। ऐसा लगता है मानो पारे के पात्र में पारद भरा हो। अतः वेद शब्द राशि ही नहीं ज्ञान राशि है। हमारे पूर्वज कहते थे कि देश काल क्रम मात्रा सत्व का ध्यान रखते हुए इनका सस्वर पाठ करेंगे ना, तो हमारी पात्रता इतनी विकसित हो जाएगी कि हमारे भीतर यही वेद मंत्र अर्थ परम अर्थ स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। वेद विज्ञान से प्रेरित होकर उन ऋषिकल्प शब्द शिल्पियों ने सृष्टि की वैज्ञानिक व्यवस्था से विशिष्ट भाव संपदा वाले ऐसे ही सुसंस्कृत पारिभाषिक शब्दों का संधान किया है। इन शब्दों की धारणा से अर्थ धारणा कितनी सरल हो जाती है, यह तो अनुभूति का विषय है। संस्कारों के अभाव वाले इस कलयुग में जब सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि तत्व धारणा की पूर्व पीढ़ी का हेतु सारी परंपराएं शिथिल हो गई हैं, तब संस्कृतनिष्ठ शब्द धारणा से ही अर्थ धारणा का द्वार विमोचित होगा। अतः बहुत सोच समझ कर ही हमने संस्कृतनिष्ठ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। वर्तमान में हमें इन अपरिचित शब्दों से परिचित होने में थोड़ी सी कठिनाई तो अवश्य होगी, पर अर्थ सिद्धि से अंतःकरण प्रकाशित व आह्लादित होगा ना, तब तो इस परिश्रम की स्मृति भी नहीं रहेगी। हम शब्द धारणा से अर्थ सिद्धि के युक्ति कौशल को सीखने वाले हैं। इसके लिए एक ही बात को बार बार करनी पड़ी तो बार बार करेंगे, अनेक दृष्टिकोणों से कहनी पड़ी तो वैसा ही करेंगे, पर इसे सीखेंगे अवश्य। स्वरूप सिद्धि। धर्म जैसा ही एक पारिभाषिक शब्द है स्वरूप, अपना रूप। जन्म के समय हमारा जो रूप था उसमें निरंतर परिवर्तन होते होते हम वर्तमान रूप तक पहुंचे हैं। भाई, परिवर्तन की प्रक्रिया तो निरंतर चल रही है ना, कोई रुकी थोड़े ही है। अतः यह रूप भी टिकने वाला नहीं है, इसलिए इसे भी अपना रूप नहीं कह सकते। यह बाह्य रूप ही निरंतर हमसे अलग हो रहा है, हम तो कभी अपने आप से अलग हुए ही नहीं। अतः जो अलग होता रहता है वह हमारा अपना रूप नहीं हो सकता। हमारा स्वरूप तो तीनों कालों में और काल के परे भी सदा एक रस ही बना रहता है, काल से अप्रभावित है। अतः वह स्वरूप सत है। जड़ तो कभी भी अपने आप का अनुभव नहीं कर सकता, पर हम तो अपना अनुभव करते हैं ना। अतः हमारा स्वरूप तो चित है, जो अपने अस्तित्व बोध में निरपेक्ष है। निश्चय ही वह स्वसुख में भी निरपेक्ष ही होता है। उसे अपने अस्तित्व के आनंद के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, अतः आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो भाई, अब तो हम समझ गए हैं कि हमारे बाह्य रूप में निरंतर परिवर्तन होते रहने पर भी हमारा मूल अस्तित्व तो जस का तस ही बना रहता है ना। अतः यह सिद्ध होता है कि इस नित्य स्वरूप ने ही निरंतर परिवर्तित होने वाले इन रूपों को धारण कर रखा है। हमारे ही नहीं, सारी सृष्टि के सभी रूपों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व तो सदा ही बना रहता है ना। अतः विविध रूपों वाली इस सृष्टि को भी एक स्वरूप ने ही धारण कर रखा है। इस तथ्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह शरीर भी तो पंचभूतों से ही निर्मित है ना। अतः जिन रूपों को हम अपना समझते हैं वे यथार्थ में पंचभूतों के परिवर्तित रूप ही तो हैं। इसलिए हमारे रूप में परिवर्तन या सृष्टि के रूपों में परिवर्तन होना तो मूल में एक ही है ना। अतः सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले शरीर संसार दोनों रूपों का आधार एक ही स्वरूप है। अरे, इन रूपों के अनेक रूपों वाली इस सृष्टि के समान ही संज्ञावाचक शब्दों और इनके व्यवहारों को व्यक्त करने वाले सारे ही धातु शब्द रूपों को भी तो इस स्वरूप ने ही धारण कर रखा है। इसी कारण तो शब्द सिद्धि संभव होती है। एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं आपको? जैसे कोई भी पदार्थ काल के कलनात्मिका शक्ति के प्रभाव में देश काल क्रम मात्रा के तारतम्य से अपने कारण रूप में क्रमशः परिणाम को प्राप्त होने के क्रम में अनेक रूपों में परिवर्तित होते होते स्थूल रूप में व्यक्त होता है ना? ठीक ऐसे ही शब्द भी देश काल क्रम मात्रा के तारतम्य से अनेक रूपों में परिवर्तित होते होते वर्तमान स्थूल रूप में अभिव्यक्त होते हैं। दोनों की प्रक्रिया एक जैसी ही है, इसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, पदार्थों के संहार क्रम में पुनः कारण रूप में समाने की जो प्रक्रिया है ना, वैसे ही शब्द रूपों के निर्माण की विपरीत प्रक्रिया से हम इनके मूल तक पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक स्वरूप वाले मंत्र मंत्रार्थ इस व्यवस्था से ही प्रकट होते हैं। प्रारंभिक धारणा के रूप में यह शब्द रूप अंतर मन में अच्छे से रच बस जाए ना, तो इसका आधार चेतन स्वरूप तो स्वतः प्रकट होता है। हाँ, शब्दाकार राम रूप हृदय में रम जाए ना, तो श्री राम स्वरूप तो स्वतः प्रकट होता है। इस शब्द रूप सिद्धि से स्वरूप सिद्धि के लिए ही हम बार बार शब्द संधान कर रहे हैं। आत्मबाधा। वर्तमान में हमारे द्वारा एक विचित्र स्थिति बन रही है। स्वरूप ने हमें धारण कर रखा है, उस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसके विपरीत हमें तो अनेक वस्तु व्यक्तियों को अपना मानकर स्व के रूप में धारण करने का भ्रम हो गया है। स्वधर्म के पालन से यह कृत्रिम आरोपण हटते ही स्वरूप का प्रकाश तो स्वतः होता है। इसके लिए अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ता भाई, केवल शब्द सिद्धि ही नहीं, ज्ञान योग कर्म भक्ति यह स्वरूप सिद्धि तो सभी पथों से होती है। ज्ञानी के लिए तो स्वरूप सिद्धि व तत्वानुभूति एक ही है, भक्त के लिए भी स्वरूप सिद्धि के बिना भगवत तत्वानुभूति संभव नहीं है। परिवर्तन का कारक काल। अभी अभी हमने प्राकृत देश और प्राकृत शरीरों के जन्म से मृत्यु तक के अनेक परिवर्तित रूपों की चर्चा की है। ये सारे ही रूप काल के परिणाम में ही परिवर्तित होते हैं ना? अतः यथार्थ में हमारे शरीर और सृष्टि के विविध रूपों के माध्यम से काल ही अनेक रूप धारण करता है। आप कल्पना करिए तो, सारी पृथ्वी पर यह काल ऐसे ही कितने रूप धारण करता होगा? और यह पृथ्वी तो बहुत छोटी है, देश काल दोनों दृष्टियों से नगण्य सी। इस त्रिआयामी पृथ्वी में वर्तमान भूत भविष्य रूपी भेदमय त्रिकाल के विभिन्न आकारों से लगाकर जहाँ देश काल दोनों का नित्य वर्तमान मूर्तामूर्त रूप विद्यमान है, उस ब्रह्मलोक पर्यंत तो काल इतने रूप धारण करता है कि इसकी तो गणना भी संभव नहीं है। जैसे हमारे जन्म से मृत्यु तक के सारे ही रूप प्रतिक्षण महाकाल का ग्रास बनते जाते हैं ना, वैसे ही भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत सृष्टि के सारे ही रूप इस कालाग्नि में ही दग्ध हो जाते हैं। यह सब देखकर मैत्रायणी ऋषि कहते हैं,
काल पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि सस्मिंस्तु पच्येते कालो यस्तं वेद स वेदवेत्।
काल सभी परिवर्तनशील भूतों प्राणी पदार्थों का महान आत्मा यानी जहाँ काल का नित्य वर्तमान रूप विद्यमान है, उस महत्तत्व में अस्मिता मात्र आत्मबोध में पाक करता है। और जिस स्वरूप में उस काल का भी पाक होता है, उसको जो जानता है वही वेदविद अर्थात वेद विज्ञानी है। अध्यास से अध्यात्म तक हम सभी देहधारी हैं, अतः हम सबको देहाध्यास के साथ ही देश की धारणा तो स्वतः हो जाती है। देश और काल में तो अविनाभाव संबंध है ना, अतः देश की धारणा के साथ ही काल की भी उतनी ही धारणा हो जाती है। हम स्थूल नेत्रों या दूरबीन से भी जितने स्थान को देख लेते हैं ना, उसकी भी बहुत थोड़ी सी धारणा होती है, पर यह धारणा अपने से भिन्न वस्तु के रूप में ही होती है। देह में तो हमारा आत्मभाव है ही, अतः देह के साथ होने वाली देश काल की धारणा अपने से अभिन्न होती है। यह अभिन्नता ही धारणा का यथार्थ रूप है। परीक्षित भी देहधारी ही थे, अतः देश काल की धारणा तो उनको पहले से ही थी, पर इस देहाध्यास के कारण वह धारणा देह तक ही सीमित थी। इसलिए देह त्याग की परिस्थिति बनते ही उन्हें काल का कराल रूप में अनुभव हो रहा था। भाई, हमारा देश काल का बोध स्थूल देह के साथ ही बंधा रहे तो इसका अर्थ यही होता है कि अभी हमारे इन देश काल की धारणा की पात्रता स्थूल देह के स्तर तक ही है। अब ऐसे में कोई हमें उपदेश दे कि अरे ये देह तो नश्वर है, आत्मा अमर है, हमारे सामने पृथ्वी की तुच्छता और ब्रह्मलोक पर्यंत लोक लोकांतरों की प्रशंसा करे तो हमें वह बहुत दूर की बात लगेगी। हम इसकी कुछ भी धारणा नहीं कर पाएंगे। जिसकी चर्चा की जा रही है उसके साथ हमारा आत्मभाव ऐसा जुड़ जाए कि उस भाव स्थिति का हमें भी अभिन्न बोध होने लगे ना, उसे ही धारणा कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा में हम विस्मय पूर्वक देखते हैं कि महान मनोवैज्ञानिक श्री शुकदेव जी महाराज ने काल के कराल रूप से प्रभावित परीक्षित को ऐतिहासिक कथा दृष्टांत, तत्व चर्चा आदि सभी शास्त्रीय साधनों द्वारा उनकी देह बोध तक सीमित देश काल की धारणा का सदुपयोग करके शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से ही उनके सीमित देश को व्यापक रूप देते हुए इसी के माध्यम से क्रमशः सूक्ष्म से भी सूक्ष्म काल की देह रूपी देश से ब्रह्मलोक पर्यंत धारणा कराते और आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार पूर्वक देश काल दोनों से ऊपर उठाते हुए जिसमें यह काल भी पचता है उन काल के भी काल महाकाल स्वरूप में ही प्रतिष्ठित कर दिया था। आहा, परीक्षित के लिए अध्यास से अध्यात्म तक की काल के कराल रूप से स्वरूप तक की अंतर्यात्रा कितनी रोमांचक रही होगी, है ना? हमारी अंतर्यात्रा भी ऐसी ही रहने वाली है। पारंपरिक सरणी कथा कविताओं, अनेक उदाहरणों, दृष्टांतों, पारिभाषिक शब्दों से लक्ष्यार्थ की धारणा का प्रयास करना हमारी प्राचीन परंपरा है। अर्वाचीन युग में भी यह प्रवाह बना हुआ है। जब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे ना, तब पाएंगे कि श्री ठाकुर ने सभी व्यक्तियों के प्रतिदिन के अनुभवों को ही अंतःकरण में जागृत करके गंभीर विषयों की धारणा का अनुपम प्रयास किया है। उपपत्ति शास्त्रीय सिद्धांतों के शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप की सुस्पष्ट धारणा की एक और भी प्राचीन परिपाटी है उपपत्ति। यह भी गंभीर अर्थ वाला एक पारिभाषिक शब्द है। जो घटित हुआ है उसका कारण क्या है, क्यों है, इसे तर्क, युक्ति, अनुभूति की पद्धति से समझना समझाना उपपत्ति कहलाता है। पर वर्तमान में हम इस शास्त्रीय उपपत्ति की पूर्ण उपेक्षा करके स्वनिर्मित सिद्धांतों की स्थापना का काल्पनिक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। राम राम जपने से कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वह ओम के जप से ही होगा। नहीं, जप से कुछ भी नहीं होगा, ध्यान से ही होगा। भगवान के ध्यान से नहीं, गुरु के ध्यान से होगा। ज्ञान से नहीं, भक्ति से होगा। भक्ति से नहीं, ज्ञान से होगा। ज्ञान भक्ति दोनों से नहीं, जो भी होगा वह योग से ही होगा। स्वर्ग नरक देवता आदि सब कपोल कल्पनाएं हैं, यथार्थ में इनका अस्तित्व है ही नहीं। गंगा जी में स्नान करने से कोई आध्यात्मिक लाभ होगा या अंधविश्वास है? शास्त्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा करके हम धर्म के स्वयंभू आधिकारिक प्रवक्ता बनकर जैसा मन में आए या जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती हो वैसा बोलते रहते हैं। आत्मा, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, योग, कर्म, भक्ति, कुंडलिनी शक्ति, ध्यान, जप आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों और वैज्ञानिक विधियों में जोड़ तोड़ करके ही हम नया पंथ मत बनाने के लिए विवश हैं। इन शब्दों या विधियों को पूर्णतया त्याग कर नए शब्दों या विधियों के निर्माण में हम समर्थ नहीं हैं, पर शास्त्रीय आश्रय लेते हुए भी शास्त्र के ही अंतर्विरोध की कैसी विचित्र मनोवृत्ति हो गई है। भाई, जब हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं हो या लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्य के प्रति गंभीरता ही नहीं हो तो हम कुछ भी करने कहने लग जाते हैं। हम बोल देते हैं, पर यदि कोई हमसे पूछे कि आपने यह सब कैसे जाना रे भाई, जाना कैसे, तो हम क्या उत्तर देंगे? जब हम अपने ही स्वनिर्मित पथ से सिद्धि कैसे मिलेगी इसके वैज्ञानिक स्वरूप को ही नहीं जानते, तब अन्य किसी भी पथ से नहीं मिलेगी यह कैसे जान गए? भाई, सनातन धर्म में तो सभी शास्त्रीय पथ समान रूप से आदरणीय हैं। यदि हम कोई लोभ लालच या नए पंथ के नाम पर किसी भी प्राचीन पंथ में मनमुखी जोड़ तोड़ करके उसे विकृत न करें तो ज्ञान भक्ति योग आदि प्रत्येक पथ के पथिक को एक ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। जब हम अपने पथ के वैज्ञानिक स्वरूप को जान जाएंगे ना, तब अपने आप सनातन धर्म के अंतर्गत सभी पथों के वैज्ञानिक स्वरूप को जान जाएंगे। इसीलिए तो इस विज्ञान वार्ता में इन विलक्षण सिद्धांतों की इतने विस्तार से चर्चा की जा रही है। हमें अवश्य ही इतना ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी कपोल कल्पना, कैसा भी विचलन कभी भी नहीं आवे। धर्म अध्यात्म के नाम पर कोई कुछ भी कह दे और हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लें, ऐसी लुंजपुंज व्यक्तित्व वर्तमान युग में आत्मघाती है। अतः हमें प्रत्येक सिद्धांत को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर ही स्वीकार करना है। यदि हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं, तो यह पुस्तक भी हमारे लिए नहीं है। कृपया समय नष्ट नहीं करें, इसे तत्काल बंद कर दें। हम भी हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा ही उद्घाटित सतपथ के पथिक बने हैं। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो तो अच्छा है, न हो तो भी कोई बात नहीं। पर हाँ, अपने आप के प्रति विश्वास, सत्य के प्रति प्रबल आग्रह और ज्ञान प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा रूपी पाथेय के बिना इस सतपथ पर एक कदम भी नहीं चल सकते। हम इस आत्मसंपदा रूपी पाथेय को लेकर दृढ़ता पूर्वक सत्य के संधान में जुट जाएं, तो पद पद पर प्रमाण देखकर उनकी दिव्यानुभूति से अभिभूत हो उन महान आचार्यों के प्रति आस्था और विश्वास का ऐसा अंकुर फूटने लगेगा कि हम उनके प्रति सात्विक श्रद्धा भी किए बिना रह न सकेंगे। हम उन्हीं के वंशज हैं, यह गौरव बोध हमें आत्मसम्मान से भर देगा और अनायास ही हमारे पूर्वजों द्वारा हम आत्मीय स्वजनों के लिए संजोकर रखी गई आत्म धरोहर हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। आहा, तब तो हम भी उन्हीं के साथ स्वर में स्वर मिलाकर परमानंद पूर्वक गाने लगेंगे।
शांति शांति शांति।